بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. جی الحمد للہ، آج ہمارا ریویو ہوگا کتاب صفات المنافقین والاحکامات. ہوپفلی سب کو آواز آ رہی ہوگی صحیح انشاءاللہ. چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. سسٹر ناہید صدیقی جی، آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں جو یہ ہپوکریسی ہے، نفاق، اس کے بارے میں. نفاقہ کیا ہوتا ہے؟ نفاق ہوتا کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفاقہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک باسری ہو جس میں دونوں طرف سوراخ ہو، جیسے اس کو کہتے ہیں نفاقہ، یعنی ایک طرف سے ڈالو دوسرے سے گر جاتا ہے. اسی لیے خرچ کرنے کو بھی انفاق کہتے ہیں. نفاقہ مطلب وہ منافقوں کے لیے آیا ہے جو لوگ اوپر سے ان کا الگ منہ ہوتا ہے اور دوسرے طرف ان کا الگ دل الگ ہوتا ہے. اوپر سے کہتے ہیں یس یس، اندر سے کہتے ہیں نو نو، ان کو کہتے ہیں منافق.
جی الحمدللہ، صحیح ماشاءاللہ آپ نے بتایا ہے. ماشاءاللہ کہ دیکھیں ایک ٹنل کی طرح ہوتا ہے نا ہپوکریسی کی. اگر انسان یہ دیکھے کہ مجھے میرا یہاں پر نقصان ہے تو وہ ایک رستہ رکھتا ہے کہ دوسری طرف نکل جائے. جیسے امام نووی اور غزالی نے ایک امیجری بنائی ہے، ایک چوہے کی مثال دی، ایک ریٹ کی، کہ وہ ایک ریت میں یا کسی بھی جگہ پہ دکھ کر لیتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سانپ وغیرہ آئے گا ایک رستے سے تو میں دوسرے سے نکل جاؤں گا. تو یہ ہوتا ہے نفاق. اور آپ ہی مجھے بتائیں سسٹر ناہید ایک اور بات، کہ یہ اس کا سٹارٹ کب سے ہوا؟ نفاق کا بگننگ یہ کب ہوا؟ یہ کیا عربوں میں تھا یا مکہ
میں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں جی. جب تک مکے میں تھے تو کوئی سب مشرک تھے یا مسلمان تھے، لیکن جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر جو تھے وہ لوگوں کو مجبوراً، چونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بادشاہ بننے والا تھا، اس کو تاج بنانے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اس کو کوئی میری بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، تو اس نے اوپر سے ظاہر کیا کہ جیسے میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے ان کے دل اسلام پہ ابھی قریب نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے منافقت پیدا ہوئی کہ وہ مجبوراً انہوں نے اسلام لایا لیکن ان کو دل نہیں تھا، ان کے اندر سے مطلب وہ نہیں چاہتے تھے اسلام لانا، لیکن چونکہ حکومت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے ادارہ داری تھے، ان کو مجبوراً اسلام کا لبادہ اوڑھنا پڑا.
جی
یہ چیز مدینہ میں شروع ہوئی ہے، مکے میں منافق نہیں ہوتے تھے، اس لیے ساری آیتیں جو مدنی ہیں نا اس میں سب انفاق منافقوں کے بارے میں زیادہ تر آئے تھے، اسی مدینہ میں نازل ہوئی ہیں.
جی ماشاءاللہ الحمدللہ، بالکل صحیح بتایا سسٹر ناہید نے، الحمدللہ. دیکھیں جو عرب تھے نا، عربوں میں تو مروعہ تھا. مروعہ ہوتا ہے ایک مینلینس، ایک ایسی بات کہ وہ جو حق ہوتا ہے نا سچ، اس میں سے بھی جو سب سے بہترین ٹاپ کا وہ چوز کرتے تھے. موسٹ رائٹ فرام واٹ از رائٹ، ایسے وہ اس میں پرائڈ لیتے تھے، بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ ہماری جو بات ہے، زبان ہے، وہ کبھی بھی نیچے نہیں ہوگی اور ہمارا جو وعدہ ہے وہ ہم اس کو پورا کریں گے، چاہے دشمن کے ساتھ ہو اور ہم سچ کا ساتھ دیں گے. تو جیسے ابو سفیان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بھی کیا تھا، سچ ان کے بارے میں کہا تھا. اور انہوں نے کہا تھا جب مجھے اپنے لوگوں کا ڈرنا ہوتا کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے یا کہیں گے یہ دھوکے باز ہے ایسا، تو میں سچ نہ بتاتا. لیکن چونکہ اتنا عربوں میں تھا سچائی کا، تو یہ جو منافقت ہوتی ہے وہ تو ڈپلسٹی ہوتی ہے نا، دھوکے کے دو چہرے، ڈبل ڈیلنگ، دھوکا، جھوٹ، اس سب میں آ جاتا ہے منافقت. تو یہ ہجرا کے بعد مدینہ میں سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے الحمدللہ. سسٹر راحت آپ بتائیں کہ منافقت کی اقسام کتنی ہیں، ایک بتائیں آپ پہلی.
منافقی دو قسم کے ہیں، ایک تو بات بات کے قسمیں کھانے کا، بات کرے تو
آپ نے جو دو کہا آپ مجھے وہ بتائیں جو اعتقادی نفاق ہے وہ کیا ہوتا ہے.
جو بات کریں اعتقادی وہی ہے نا، جو منہ پہ جیسے بات کرنے میں دل میں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن جو حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بات وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی ہو تو اس میں بھی کہہ لو کہ خیانت کرے، اور جھوٹ بات بات پہ جھوٹ پڑے.
یہ والی چیز میں آپ کیا بھی پوچھتی ہوں سسٹر، یہ میں اعتقادی یہ والی نہیں، یہ عملی منافقت
عملی ہے جی.
जी, तो इसका फिर मैं इंशाल्लाह आपसे पूछती हूँ। पहले ऐसा करते हैं, मैं तो खादी को कवर करते हैं, तो इसका इंशाल्लाह सेक्शन पर आएंगे तो फिर मैं आपसे इसका पूछूंगी। जज़ाकअल्लाह खैर। जी सिस्टर समिया अख्तर, आप मुझे बताएं इसके बारे में, एतकादी जो नफाक है, नफाकुल अकबर भी कहते हैं, जो खालिस मुनाफ़त है, जो प्योर जिसको कहते हैं अकीदे की जो मेजर नफाक है, जो वर्स्ट है, अब वो कौन सा है?
जी सॉरी, मुझे वो अल्फाज नहीं जहन में आ रहे, इतनी बार सुना हुआ है, उस वक्त लगता होता है कि नहीं भूलेगा, अभी एकदम से जहन में नहीं है।
अच्छा कोई बात नहीं, मैंने आपको इसका नाम बता दिया है, दो है ना,
जी
पहली जो है
वो है, नाम तो यही नाम भी सुने हुए हैं और उनकी तफसील भी इतनी बार सुनी हुई है कि लगता नहीं था कि कभी भूलेगा, अभी एकदम जहन में कुछ नहीं है।
देखिए, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ही हमारी क्लास है सिर्फ रिमाइंडर्स के लिए, सुभान अल्लाह। देखिए इसीलिए है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जो सब आए, अल्लाह ताला हमको सीखने का भी और इस पर अमल करने का मौका अता करें, और अल्लाह ताला हमें हदायत दे इन सब से, और अमली जो है ना, हम अमली तौर पर इन अहादीस को इन रिमाइंडर्स के थ्रू अपनी जिंदगी में लाएं। तो देखिए पहली जो है वो एतकादी है, जो मैंने आपको बता दिया अकीदे की, और दूसरी जो है मुनाफ़त जो है हिपोक्रेसी है, वो अमली है। ठीक है, ये अकीदे की जो प्योर जो खालिस थे वो मुनाफिक उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं, जो सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिनके नाम भी बताए गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को?
जी अच्छा, वो एतिकादी यानी कि वो दिल से ईमान नहीं लाए थे, लेकिन बज़ाहर वो सारे काम मुसलमानों के साथ करते थे, सिर्फ जिहाद में जाने में रगाल में वो पीछे रहते थे, बाकी नमाजें भी साथ पढ़ते थे, सारे काम साथ करते थे, लेकिन अंदर से वो ईमान वाले नहीं थे। जैसा कि कुरान में भी वो कहा गया ना कि वो कहते हैं कि वो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर, लेकिन वो मोमिन नहीं है, वमा हुम बिमोमिनीन। तो वो अभी कोई और सिस्टर बताएंगे तो फिर मेरे जहन में फौरन आ जाएगा कि हाँ ये मुझे पता था, लेकिन अभी पता
नहीं,
पिछले भी एक दो बार यही हुआ कि जब उस्तादा जी ने मुझे पूछा उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया, जब दूसरी सिस्टर ने बताया तो मुझे पता चला कि ये तो मुझे आता था, लेकिन उस वक्त नहीं रहन में आया।
जी कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, इसीलिए हम आते हैं ना रिव्यू में, अगर कुछ भूल जाए तो दूसरी से याद आ जाए। तो ये आप मुझे बताएं कि कुरान में जो है वईद, जितनी भी वईद और अजाबों का है, तो वो इस मुनाफ़त के बारे में या अमली मुनाफ़त जो अगली हम पढ़ेंगे?
एतकादी मुनाफ़त के बारे में है, क्योंकि अमल में तो फिर वो बार दफा वो पता नहीं चलता इंसान को भी, ध्यानी में भी हो जाता है तो उस पे तौबा कर लेता है इंसान।
आपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बताया है। देखिए इसीलिए हम आते हैं रिव्यू में कि हम रिमाइंडर्स हो हमारे लिए, जो सिस्टर्स नहीं आती फिर उनको किस तरह रिमाइंडर्स होंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम आप सब के लिए। देखिए जो एतकादी है ना निफाक, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे थे जो सिर्फ, जैसे इन्होंने भी बताया है कि सिर्फ वो ईमान दिखावे के लिए लाए थे, वो अंदर से नहीं था उनका ईमान, फेस उनका अंदर नहीं था, सिर्फ दिखावे के लिए वो आए थे, और ये सबसे बड़ी बीमारी है। और जैसे इन्होंने बताया वो नमाजें भी पढ़ते थे फजर के लिए, देखिए हमें फजर के लिए उठने में मसला होता है, लेकिन वो फजर में उठते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाके नमाज पढ़ते थे, और उनको वो अंदर से नहीं लाए थे ईमान। कितना उनके लिए ये एक बड़ा टेस्ट है, देखिए आजमाइश थी उनके लिए, काफिर ही है ना वो, तो काफिर ही की एक है, इसीलिए इनके लिए जो है कुरान में बहुत बड़ी वईद है, सजाएं जितनी बताई गई हैं वो इनके लिए हैं, इन मुनाफिकों के लिए हैं। आज कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वो जो कुरान की इतनी बड़ी बड़ी वो जो दर के अफसल मिनन नार के बारे में जो लोस्ट पिट ऑफ फायर है, वो आजकल के मुनाफिकीन के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। वो तो आगे हम पढ़ेंगे कि आज पता भी नहीं है कौन है मुनाफिक कौन नहीं। तो ये जो मेन है, जो आखिरी जो आग का जिनको मिलेगा और अजाब अलीम की हैं, वो इनके लिए हैं, और दुनिया में फिर इनको कोई सजा कोई हद नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स इनको अजाब अलीम मिला था ना और मिलेगा। तो हुदैफा रजी अल्लाह अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे इनके नाम, और ये है कि देखें सूरह बकरा में भी आता है इनके बारे में, जो फर्स्ट हमारा पैसेज है, हम जब भी कुरान मजीद स्टार्ट करते हैं तो देखें सूरह बकरा में इनके बारे में आया है कि मसल्लल्लज़ी सौक़द नारन वाली जो आयात हैं, कि देखिए इनको पता चल गया ये नूर है اور یہ ہدایہ ہے، اللہ نور ہے، قرآن، رسول، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے دل سے، دل کی بات ہو رہی ہے، سامنے تو لے آئے، دل سے نہیں لائے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نور ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انہیں اندھا ہی کر دیا. جی یہ ہے منافقت. سسٹر شبنم خان.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے ڈیل کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ اب ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ کون ہے وہ منافق، تو آ جائے ان کو، ہم ان سے ہم ڈیل کر لیتے ہیں، ان کو صاف ہی کر دیتے ہیں نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر کیسے ڈیل کیا، کیا فرمایا؟
جی جیسے عبداللہ بن ابی کی مثال ہے کہ سب سے بڑا وہ تو سردار تھا نا منافقوں کا، اور جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کو دفنایا بھی جا چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے بیٹے نے جب درخواست کی کہ ان کا مطلب میرے والد کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں اور اپنا کرتا آپ دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بہترین، آپ اخلاق کے درجے پہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا کرتا بھی، کرتا مبارک بھی دیا اور لعاب دہن بھی جو ہے اس کے منہ میں ڈالا، اور حضرت عمر نے ان کو روکا بھی کہ آپ جو ہے منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کے لیے مغفرت مانگوں یا نہ مانگوں، اللہ تعالیٰ کو 70 بار بھی مغفرت مانگوں تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے میں جو ہوں مطلب پڑھا دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھائی تو اس کے بعد وہ دوسری آیا نازل ہوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں خاص کے، وہ اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہیں اب منافق ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی ان کی قبر پہ کھڑے ہوں گے. تو مطلب آپ کا اخلاق دکھائے گا کتنا بہترین.
صحیح الحمدللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پرنسپل بتایا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا، لم عمر، کہ میں کسی کا دل نہیں چیر کر میں دیکھ سکتا اور کسی کو بتا سکتا کہ دل کے اندر کیا ہے. تو ہمیں بھی جو لوگوں کے آؤٹ ورڈلی انہیں ہمیں ڈیل کرنا ہے، لوگ جو سامنے بظاہر ہیں وہ ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ جی اندر سے ہے ایسا، یہ مجھے نفرت کرتا ہے یا اندر سے پسند نہیں کرتا یا یہ اندر سے تو اچھا نہیں ہے، اندر سے تو اس کے اندر ایمان نہیں، اوپر سے بیہیو کر رہا ہے، ایسا تو ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے. تو جو دوسرا ہے اب ہم منافقت کے بارے میں آتے ہیں، یہ تو ہم نے عقیدے کی کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے ڈیل کیا آؤٹ ورڈلی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بتا دیا پھر بھی انہوں نے ان کو بظاہر ڈیل کیا، ان کی بات ہو رہی ہے. اور آج جب سیکنڈ والا نفاق ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ عملی نفاق ہے، عملی نفاق ہے، کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، فسق ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ جیسے آتا ہے نا مذبذبین بین ذالک، کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ثم آمنوا ثم کفروا، ادھر ہیں ادھر ہیں، فلپ فلاپ کر رہے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں. تو اس والی ہپوکریسی سے ہم سب کو بچنا ہے، یہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. اور اس کا سسٹر راحت ہمیں بتا رہی تھی، تو اب آپ اس کا آگے بتائیں کہ کیا جو ہے آیت المنافق، سائنز منافق کے احادیث سے، وہ اب آپ بتائیں کیا ہیں ان کے سائنز.
جی ان کے ایک تو پہلے میں اعتقادی کا بھی مجھے یاد آ گیا کہ وہ منافق وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جو قرآن کی جو کہہ لو کہ چیز آیتوں کو نہیں مانتے تھے، یہ اعتقادی ہیں کہ بیٹھتے تھے محفل میں، ظاہری طور پہ تو وہ محفل میں جمع ہو جاتے تھے کہ ہم مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اعتقادی نفاق میں تھے کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا اس وقت. یہ وہی سے پہلے کے ہیں، جب اسلام پورا اتر آیا تو پھر سارا وہی کہہ لو کہ عملی انسان، وہی انسان وہ مسلمان ہیں جو ایمان میں کوتاہی نہیں کر رہے، عملی منافق ہیں، یہ اعتقادی منافق نہیں ہوتے. تو جی ان میں یہ چار صفات ایسی ہیں جو منافق اور نفاق کی نشانیوں میں سے، جو بولتا ہے جو بولتا ہے تو تب جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب غصہ آ جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ برے الفاظوں سے کہہ لو کہ اپنے آپ کو بولنا شروع کر جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کے اندر نفاق ہوتا ہے. تو یہ عملی منافق کی نشانیوں میں سے آتی ہے.
تو یہ ہمیں دوسروں میں ڈھونڈنی چاہیے یا اپنے میں؟
سب سے پہلے تو اپنے آپ میں ڈھونڈنی چاہیے، کیا استغفر اللہ ربی کے ہم میں تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں پائی جاتی، دوسروں کا ہم دوسروں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن پہلے اپنے اوپر اپنے گریبان پہ کہتے ہیں نا نظر مارنی چاہیے، تو پھر دوسروں پہ کریں.
जी ठीक है, बारकल्लाहु फी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि देखें सबसे पहले तो ये जो मुनाफ़त के साइंस हैं, चार अहादीस से हमें आयतुल मुनाफिक से पता चलते हैं, साइंस ऑफ मुनाफिक। दो हमें कुरान से पता चलते हैं, कुरान में जितने सूरह तौबा में आया 54 से। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अपने बारे में केयरफुल होना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए मुझे उसमें नज़र आ रहा है तो वो ऐसा करते हैं, वो जी हर बात में झूठ बोल रहा है तो वो मुनाफिक है। हमें इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें नहीं पता उसके दिल में क्या है, अपने आप को ढूंढना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है कि मफहूम है जिसका, कि कोई भी इस चीज से अपने आप को बचा हुआ नहीं सोच सकता बल्कि वो मुनाफिक ही हो, यानी मुनाफिक समझता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और कोई भी ये नहीं सोचता, इससे डरता नहीं रहता इस चीज से मुनाफिकत से कि मुझमें तो नहीं है, कहीं मुझमें तो नहीं है, बल्कि मोमिन, एक मोमिन है, ये डरता रहता है कि ये क्वालिटी मुझमें तो नहीं, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, अगर तौरिया भी है तो कहीं दूर तो नहीं आ गया उसमें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे झूठ तो आपको पता है कितना ज्यादा हमारे पहले भी अहदीस पढ़ी है, इज़ा हद्दथ कदीब, एक ये है, दूसरी ज़ातों में नफाना, जब वो उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है तो वो धोखा दे देता है। ये आज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, इसको हम देखें कि हम किसी चीज को भी इंटरेस्टेड, व्हेन वी आर इंटरेस्टेड हम वी वायलेट दैट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम एग्रीमेंट्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कहीं भी जाके क्लास में रजिस्टर कर दिया, अब आना नहीं, इस तरह की बातें, मतलब ये छोटी से छोटी चीज में भी हम देख सकते हैं, सिर्फ ये नहीं लेकिन एक एग्जाम्पल है कि हम कहीं देखें हम कमी तो नहीं करें तो हमारा कहीं इसमें तो नहीं आ रहा। और फिर बड़े बड़े धोखे भी हर किस्म के, ये हमारी लाइफ में बहुत आम है। आखदा आखलफा, जब वादा किया जाए तो फिर वो तोड़ दे, ये हम देखें। इदाखातमा फजरा, जब उससे कोई बहस हो जाए, डिसएग्रीमेंट्स हो जाए तो वो एक्सप्लोड हो जाए, ओवरली एंग्री, बहुत ही ज्यादा उसका एक इतना ऐसा इंसान निकल आए कि जैसे इंसान सोच ही नहीं सकता कि इसमें ये भी है, इतना ज्यादा वो बुरा मनाता है और उसको कोई पसंद नहीं आती एडवाइस, कोई गुड एडवाइस अच्छी नहीं लगती। तो हमें इस सब को अपने आप में वॉच करना है बहुत ज्यादा कि हम कहीं इसमें नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा हर चीज को नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी सारी इसमें आ रही है ना। देखें हम ओवरली हर चीज से हम डर जाते हैं, हम कोई नेकी का काम भी नहीं कर सकते, तो हमें कहीं ये हिपोक्रेसी तो नहीं है कि हम डर रहे हैं हर चीज से। बहुत ये डिजीज है, इससे बहुत ज्यादा बचना है। इसका कुरान ही है जो इसका इलाज है, हदीस है, ये मेडिसिन है इसकी, इसका क्योर ये है। कुरान में जो इसकी आती है निशानियां, वला यातून सलात इल्ला वहुम कुसाला, कि वो आते हैं नमाज की तरफ मगर बहुत ही ज्यादा लेजी होकर। सुभान अल्लाह, ये तो मैं कहती हूँ अस्तग़फिरुल्लाह, इतना डर लगता है इन इन दो जो है ना निशानियों को तो देख के लगता है कि बस ये हम ही ना हों। वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून, दूसरी ये कि जब वो खर्च करते हैं तब भी क्या होता है, कराहत से, सदका दे भी दिया तो भी है कि काश वो हमारे बिल्स हैं हम इधर दे देते उधर क्यों दे दिया। ये भी दो निशानियां हैं। अल्लाह ताला हम सबको मुनाफ़िकत से बचाएं और ये कहीं हमें ना हो। हमें ये बहुत सीरियस चीज़ है और बहुत स्केरी होना, इस स्केरी चीज़ है क्योंकि हमारे आगे नस्लों तक ये जाएगी। अगर हमारे में है मुनाफ़िकत तो हमारी नस्लों में भी आगे ये ट्रांसफ़र हो सकती है। तो हम अपनी इन अहादीस से जो हैं चार और जो दो जो कुरान में जीत से हैं, इन सारी चीज़ों को अपने आप में चेक करें, लोगों में चेक ना करें। और फिर वो हदीस जो है कि जो तकबीर आते उला के साथ 5 नमाजें इमाम के साथ 40 दिन तक पढ़े तो वो नफाक से भी और आग से भी अपने आप को बचा सकता है ना। तो उसकी भी अगर किसी को है अल्लाह ताला तौफीक दें तो वो भी जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए मुनाफ़िकत से। सिस्टर शहनाज फातिमा, आप मुझे ये बताएं कि जो वाकया हुआ मुनाफिकीन का उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, गज़वा मुस्तलिक के बाद जो अब्दुल्ला बिन अबई ने कहा था। जी सिस्टर शहनाज फातिमा, आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी आप आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
जी तो वाकया इफ़क का पूछ रहे हैं आप?
नहीं नहीं, जो मुनाफिकीन का वाकया अब्दुल्ला बिन उबई ने किया था ना बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और फिर झगड़ा हो गया था सहाबा में, तो क्या उसने कहा था, क्या लड़ाई की बात
जी, अगर आप उस वाक्य की बात कर रहे हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मुनाफिक और कुछ इसमें मुखलिफ मुसलमान भी जब बातें कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल गुजरे थे एक
अपने भी कहा था कि जब हम मदीना जाएंगे तो इज्जत वाले
जी सूरह मुनाफिकून फिर अल्लाह ने नाजिल कर दी थी, तो मतलब इन लोगों ने कहा था कि ये जो इन पर खर्च करना बंद कर दें अगर हम तो ये भाग जाएंगे, और जब मदीना पहुंचेंगे हम तो हम में से इज्जत वाला जिल्लत वाले को बाहर निकालेगा। तो ये बात एक साहबी ने सुन ली थी और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो मुकर गया, तो जिस पर उन साहबी को बड़ा रंज हुआ शायद हजरत अनस थे, तो इस पर अल्लाह ने फिर
ज़ैद बिन अरकम पे ठीक है
तो उस पर अल्लाह ने फिर सुभान अल्लाह उनकी बात को सच कर दिखाया और मुनाफिक सूरह मुनाफिक को नाजिल कर दी और इस तरीके से अब्दुल्ला बिन उबई का पर्दाफाश हो गया था।
जी अल्हम्दुलिल्लाह सही आपने बताया माशाल्लाह। तो क्या इन्हें दोबारा तौबा का कोई मौका दिया गया था इन मुनाफिकीन को, इन्होंने जब ऐसी बातें कर ली थी और सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असीयत हो गई थी जाहिर।
जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल तो मौके देते ही रहते थे और अल्लाह भी इन्हें जब तक जिंदगी थी तब तक मौके दे रहा था, तो ऐसा तो कहीं नहीं आता कि इनको कोई सजा दी गई हो जब इनकी पकड़ हो गई, कि अल्लाह ने बाकी इफ्क के बाद भी छोड़ दिया था, बाकियों को कोड़े पड़े थे जो मुखलिफ मुसलमान थे लेकिन इनको छोड़ दिया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई सजा नहीं होगी, इनका जो मामला है वो आखिरत का है।
उन्होंने माफी मांग ली थी?
नहीं, आई डोंट थिंक
जी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था ना, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर माफी मांगे कि या हमने गलती की या तौबा इस्तगफार कर लें।
सेम सूरत में आता है ना कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कि इस्तगफार करें तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह, तो लव रूसहुम तो अपने सरों को बड़े घमंड से वो लोग वो कर लेते हैं, झटक देते हैं जो भी है, कि मतलब इस्तगफार करने में भी उन्हें अपनी अपने आप को छोटा करना महसूस होता है कि हम क्यों जाएं और हम अपने लिए इस्तगफार करवाएं, तो ये हाल था मतलब
अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी एक हम सिस्टर ये जो बताई थी सिस्टर शबनम के, फिर मना फरमा दिया गया था कि आज के बाद किसी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बाद ना जन नमाज जनाजा नहीं पढ़नी, तो आज हम भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी को कह दें कोई मुनाफिक है हमें लगता था वो फौत हो गया तो हम भी ना नमाज जनाजा पढ़ें क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना हो गया?
जी देखिए कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तक दुनिया में मौजूद थे तो आपको वही के जरिए बता दिया गए थे जो जो पक्के मुनाफिक थे उनके नाम, और आज क्योंकि वही का सिलसिला मुंतकिल हो गया है और अल्लाह के रसूल हमारे बीच मौजूद नहीं है, तो कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे हम पता कर सकें कि कोई कौन मुनाफिक है कौन नहीं है।
जी, आज
हम जो मामला करेंगे वो इंसान के जाहिर पर करेंगे, अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है और मुसलमान वालों वाले काम करता है तो हम नहीं कह सकते वो मुनाफिक है
जी,
तो हम नमाज से जनाजा पढ़ेंगे अगर वो अपने आप मुसलमान कहता है।
बिल्कुल ठीक आपने बताया, आज हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि कौन है और हम नमाज जनाजा भी ना पढ़े या ऐसे अल्फाज किसी के बारे में नहीं कह सकते। और जो तबरुक के बारे में है कि तबरुक को ये बता रही थी सिस्टर की तबरुक का कुर्ता भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया और लुआब भी डाला था अब्दुल्ला बिन उबै की, तो उनको बेनिफिट हुआ था ये, कोई उनको फायदा इससे मिला था, तो आज हम भी कोई बरकत ले सकते हैं इस तरह के तबरुकात से या कफन ऐसा कोई काबा से जाके उसको धुलवा कर आबे जमजम से या ऐसी कोई और बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई देख या कोई बाल या कोई जूता, तो कुछ लोग ज़ियारत भी करते हैं बहुत दूर दूर और सोचते हैं हमें बहुत नेकी इसका मिल रहा है, इजी वे आउट है ना कि सुन्नत को फॉलो करने की बजाय ये काम कर लो, तो ये भी कर सकते हैं और बरकत इससे मिल सकती है।
जी देखिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में सहाबा कराम आपके पसीने से और आपके वजू के पानी से कई कई वाक्यात आते हैं जिनसे बरकत लेते थे, ठीक है, वो अल्लाह के रसूल के ज़माने तक था। अब जो चीज़ें पाई जाती हैं तो हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि वो अल्लाह के रसूल की ही हैं, और असल जो है अगर अल्लाह के रसूल की अगर हैं भी तो फिर असल चीज़ें हमारे आमाल हैं, जैसे कि वो जो कुर्ता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और आपने लुआब दहन भी लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने साफ कह दिया था कि अगर आप 70 मर्तबा भी इस्तगफार करेंगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, तो असल चीज़ हमारे अमल हैं, अगर हमारे अमल अच्छे होंगे तो ही निजात हासिल हो सकती है, वरना हम किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ हमें नहीं बचा सकती।
जी बारकल्लाहु फी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते से उनके लिहाज से अब्दुल्ला बिन उबै की कोई मग़फ़रत नहीं हुई, जो बल्कि उन्होंने चाहा कि शायद इतना वो बुरा था, मतलब इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अच्छा हो, तो उस पे भी फायदा तो ना हुआ, तो आज हमें भी ऐसे ही, अब तो कोई चीज पता नहीं ऑथेंटिक है भी कि नहीं ना, तो हम जाके सोचें कि इससे हमें बरका मिल रही है और तो ये बात सही नहीं है। बाकी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा बता दिया सारा, और इससे देखिए हमें लर्न लेसन कितना करना चाहिए, अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक के उन्होंने उनको भी माफ किया अब्दुल्ला बिन उबई को। हमारे बारे में कोई ऐसी बात करे, हमें पता चले हमारे पीछे किसी ने बातें की हैं गलत गलत हमारे बच्चों के फैमिली के, तो हमारे क्या एटीट्यूड होते हैं कि हम माफ कर सकते हैं उनको या नहीं, और हमारे रसूल को हम देखें माफी का कितना है कि हम माफ करते हैं। तो हम भी ये बातें दरगुजर करें, जिसने जो कहा अल्लाह ताला ही उसको डील करते हैं ना, और ये सारे हमारे लिए इसमें लेसन्स हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी, और बल्कि के मुनाफ़क़त भी हमें नहीं करनी, ये भी हमने कितने लेसन्स इससे लेने इनसे। सिस्टर शाजिया नासिर, आप एक और बात बताएं यही लेसन के लिहाज से, और कि अब्दुल्ला बिन उबई पहले तो बताएं कि इतने ज्यादा क्यों थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और क्या मसला था, क्या वजह क्या थी?
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, अब्दुल्ला बिन उबई इसलिए आपसे सल्लम के खिलाफ था कि जब आपसे सल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए, तो उस वक्त क्योंकि मदीना में काफ़ी अरसे से वो जो बड़ी जंग जारी थी और उसमें काफ़ी इनके बंदे फोत हो चुके थे, और अब इसका चांस था अब्दुल्ला बिन उबई का कि ये इसके अंडर आ जाता मदीना का सारा इंतज़ाम। तो जब आप सल्लम आए तो सहाबा और फिर आप सल्लम का एहतराम, और वो जो पहले दो बैत हुई थी आप सल्लम के हाथ पर, तो जितने बड़े उस वक्त के सरदारों के बेटे थे उन्होंने चूज किया आप सल्लम को अपना सरदार मुकर करना, मतलब एक उनको एक रुतबा मिला, एक मकाम जो मिला, उस वजह से फिर ये अब्दुल्ला बिन उबई आप सल्लम से बहुत जेलस हुआ, और उसने फिर इस चीज़ को ऐसे किया कि उसके अंदर मुनाफ़क़त बहुत ज़्यादा फिर बढ़ गई कि वो इन वो देख रहा था ये बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और वो कुछ कर नहीं सकता, कि सब आप सल्लम के साथ होते जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये फिर अपनी मुनाफ़क़त ये छुपा नहीं सका अपनी मुनाफ़क़त को ये।
जी, तो देखिए हमें इनकी पर्सनालिटी से भी कितना सीखने को मिला है कि जेलस अगर आप किसी से होते हो अपने ही आप को तबाह कर देते हो। उसने अपने ही आप को तबाह कर दिया, उसने अपनी जेलसी में अपनी कुर्सी अपनी इस चीज में क्या उसको मिला। देखिये आप दुनिया में भी कोई भी सुरखरू नहीं थी, दुनिया में भी जलील और आखरा में भी क्या। तो इससे हमें ये भी अल्लाह ताला ने कितना इन सारे जितने भी हैं अहादीस और कुरान की जितने भी हमें इनसे कैरेक्टर से पता चलता है कि हम अपने आप की आंखें खोलें कि अब चॉइस हमारे पास क्या होनी चाहिए। अपने ही आप को जलसी में हसद में किसी चीज की लालच में बर्बाद ना करें, और दूसरे के पीछे लग जाना उसकी दुश्मनी में अपने आप को हम तबाह कर देते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। और आप मुझे ये बताएं कि वो जो तीन लोगों के बारे में आई है हदीस के, वो बैठे हुए काबा के पास बात कर रहे थे, वो सर आप मुझे थोड़ी एक्सप्लेन कर दें, और इससे आपने क्या समझा?
थोड़ा बताएंगे कौन से?
जी, जो तीन लोग बातें कर रहे थे, जो हदीस आती है कि वो जसामत तो उनकी बहुत अच्छी थी लेकिन अकल से कम थे।
जी,
तो वो कह रहे थे कि वो कह रहा था अल्लाह सुभान व तआला सुनते हैं, तो दूसरे ने कहा हाँ ऊंची आवाज में तो सुनते हैं, आहिस्ता में शायद नहीं सुनते, और फिर तीसरी ने कहा आहिस्ता भी सुनते हैं। जी, ये बताए आगे क्या आपने इसके लेसन लिए?
जी, इससे ये कि हमें जो वो बातें कर रहे थे तो वो समझ रहे थे कि हम अगर ऊंची आवाज में बात करेंगे तो अभी अल्लाह सुबहान तआला सुन सकते हैं, इसके अलावा हम छुप छुप के बात करेंगे तो अल्लाह सुबहान तआला को आवाज़ नहीं जाएगी। तो इससे हमें ये लेसन तो ये है कि हमारा अकीदा अल्लाह सुबहान तआला पे ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तआला समीउन बसीर हैं, अल्लाह सुबहान तआला के को हमारी तरह नहीं है कि जैसे हमारी समाअत है कि हम अपने पास बैठे इंसान की सरगोशी सुनना कई बार मुश्किल हो जाता है। अल्लाह सुबहान तआला तो दिलों के अंदर के भेद जानते हैं, तो हमारे दिल में जो होगा जो कुछ भी होगा अल्लाह सुबहान तआला को उसका इल्म है। ऐसा नहीं है कि हम अगर दिल में भी हमारे कुछ ऐसा है तो उसका भी अल्लाह सुबहान तआला को पता है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कि देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर सूरह सजदा की जो आयात हैं ये नाजिल हो गई कि अल्लाह सुबहाना ताला ये जो भी बात है छुपा नहीं सकते ना, और इनकी हर कान आंखें हर चीज गवाही देंगी, पर अल्लाह सुबहाना ताला किसी चीज से भी बेखबर नहीं है। تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات نازل کر دی جو ان کی کانورسیشن تھی. کبھی شیطان بھی ایسے گمان لاتا ہے, کبھی میں نے اکثر سنا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں کہ نہیں سن رہے, ایسی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. استغفر اللہ. یہ تو آپ دیکھیں یہ آیات حامیم سجدہ کی کہ کتنی سبحان اللہ ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے. تو ایسے جب خیالات آئیں تو تعوذ پڑھیں اور ان چیزوں سے بچیں کہ ہمارے اعضاء یہ ہماری زبان ہی ہمارے خلاف نہ بول دے نا کہیں. اور پھر دیکھیں یہ بھی ایک لیسن کہ چاہے آؤٹر اپیرنس سے جج نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں سکھائیں گے, ان کے پاس کیا ہے. تو جیسے ان کو دیکھیں کہ وہ بتا رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ عنہ کے دیکھنے میں تو اچھے بھلے تھے جسم والے, اور مطلب آؤٹر لک تو اپیئرنس ان کی اچھی تھی لیکن عقل نہیں تھی. تو ہم جج نہ کریں کس میں کتنی عقل ہے, ججمنٹل نہ ہونا. تو انہوں نے بھی اتنی اچھی بات بتائی ہے الحمدللہ. تو سسٹر یاسمین اقبال آپ بس ایک اور بات بتائیں پھر ہمارا یہ ریویو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو منافقین تھے وہ کسی جنگ میں اس طرح جانا ہوتا تھا تو ان کا کیا ہوتا تھا رویہ, وہ تیار ہوتے تھے خوش خوشی جانے کے لیے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب منافقین کو جنگ کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ ٹال مٹول کرتے تھے, جس طرح انہوں نے غزوہ تبوک میں بھی کیا تھا, اور وہ بالکل جانا پسند نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کو نقصان ہوگا. تو اس کے لیے بھی ایک آیت اتری تھی کہ اگر موت ہوگی تو گھر میں بھی آ سکتی ہے. اور یہ جنگ جب غزوہ احد ہوا تھا تو یہ عبداللہ بن ابی اپنے منافقوں کو لے کے نکل گیا تھا.
جی صحیح ہے, بارک اللہ فی, ماشاء اللہ الحمد للہ. بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ منافقین جو تھے نا وہ پیچھے رہنے کو پسند کرتے تھے, اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے تھے. خوش ہوتے تھے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور احد میں بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ گیا ہے لیکن واپس بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئے تھے, وہ نہیں لڑے تھے نا جنگ میں احد میں بھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات بھی نازل فرمائی کہ ایک تو وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر, اور پھر وہ بعد میں چاہتے تھے کہ ہمیں ہماری تعریفیں بھی کی جائیں. جب کام ہی کچھ نہیں کیا تو تعریف بھی کیوں ہو. تو بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو عذاب عظیم ہے, اور اس سے ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اگر کہیں نیکی کی کوئی ہمیں آواز دی جاتی ہے, بہت موقع اور بہت ساری مختلف قسم کی ہیں گڈ ڈیڈس الحمدللہ, تو ہم بھی لیزی نہ ہوں. انلیس کوئی ایکسکیوز ہو جینیون تو ہم ضرور, پھر تو ہمارے پاس ایکسکیوز ہے نا, اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے. لیکن ہمیں بھاگنا چاہیے, دوڑنا چاہیے مغفرت کے لیے اور نیک کام کے لیے, ہم بھی ایسے لیزی نہ ہوں. الحمدللہ ریویو ہو گیا یہ کمپلیٹ, جزاک اللہ خیر آپ سب کا آنے کا. بارک اللہ لی ولکم, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.